الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة کی آیت 240 سے ہم شروع کریں گے والذین يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج وہ لوگ جو فوت ہو جاتی ہیں تم میں سے اور اپنی بیویوں کو چھوڑ دیتے ہیں تو ان کو وصیت کرنی چاہیے اپنی بیویوں کے لیے ایک سال کی لیے گھر سے نکالے بغیر. یہ چونکہ عربوں کے ہاں یہ طریقہ تھا کہ وہ جس طرح ہمارے ہاں بیوہ جو ہے وہ گھر میں ہی نہیں بیٹھی رہتی, عربوں کے ہاں اس سے مختلف معاملہ تھا کہ ادھر کوئی عورت بیوہ ہوتی تھی ادھر سال چھ مہینے کے اندر اس کی شادی ہو جاتی تھی عدت کے بعد. تو یہ ان کے ہاں نہیں تھا کہ وہ بیوگی کی حالت میں ساری زندگی گزار دے گی. ہمارے ہاں چونکہ معاشرت میں یہ تصور موجود ہی نہیں ہے, کہیں کہیں شادی ہوتی ہے بیوہ عورت کی, تو اس وجہ سے ہمارے لیے یہ ایک اجنبی سی بات ہے کہ اچھا اپنی بیوی کے لیے ایک سال کی ہم وصیت کریں گے. تو عربوں کے ہاں چونکہ اس نے جانا ہوتا تھا, سال کے اندر اندر تقریباً شادی ہو ہی جاتی تھی, تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے عام طریقے کے مطابق یہ حکم دیا کہ اگر بیوہ نے دوسری جگہ شادی کرنی ہے جس علاقے میں یہ رواج ہے, اور ہمیں بھی یہ رواج اپنانا چاہیے کہ بیوہ خواتین کی شادی کر دینی چاہیے, خاص طور سے جو ابھی بہت بوڑھی نہ ہوئی ہوں. لیکن ہمارے ہاں یہ غیرت کا مسئلہ بھی ہوتا ہے, ہم پسند نہیں کرتے کہ ہماری بیوہ والدہ جو ہے وہ کسی اور مرد کے ساتھ شادی کر لے, بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں. لیکن بہرحال دین کے اندر اس میں کوئی منع نہیں ہے, بیوہ عورت دوسری شادی کر سکتی ہے, اس میں کوئی عیب نہیں ہے. اسی پہلو سے اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنی اسی شریعت کے لحاظ سے جو اللہ نے دے رکھی ہے کہ بیوہ عورت دوسری جگہ شادی کرے گی تو ایک سال کا خرچہ مرنے والے شوہر کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وہ وصیت کر جائے. اس سے وراثت کا بھی ایک مسئلہ حل ہوتا ہے. ہمارے ہاں عام طور سے سمجھا جاتا ہے کہ ہم وارثوں کے لیے وصیت نہیں کر سکتے, جبکہ بیوی بھی وارثوں میں شامل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے الگ سے ایک سال کے خرچے کی وصیت کا حکم دے رہے ہیں, جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وصیت کا حق وارثوں کے سلسلے میں بھی ہوتا ہے اگر اس طرح کی خاص صورتحال سامنے ہو. تو فرمایا کہ وہ لوگ جو تم میں سے فوت ہو جائیں اور اپنی بیویوں کو پیچھے چھوڑ کر جائیں تو ان کو وصیت کرنی چاہیے اپنی بیویوں کے لیے پورے ایک سال کے لیے غیر اخراج, اپنے گھروں سے نہ نکال کے حکم کے ساتھ. یعنی ایک سال کے لیے نہ انہیں گھروں سے نکالا جائے گا بلکہ ان کو ایک سال کے لیے خرچہ پانی بھی دیا جائے گا. فائن خرجنا فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسہن من معروف. اور اگر وہ خود گھر چھوڑ کر چلی جائیں, یعنی ان کی دوسری جگہ شادی ہو جاتی ہے, چھ مہینے بعد ہو جاتی ہے, سات مہینے بعد ہو جاتی ہے, تو فرمایا کہ اگر وہ خود چلی جاتی ہیں اور وہ معروف طریقے کے ساتھ اپنا فیصلہ کرتی ہیں تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تم مجبور کر کے ان کو نکالو تو گناہ ہوگا ایک سال کے اندر اندر, اور ان کو نان نفقہ نہ دو ایک سال کے لیے تو گناہگار ہوں گے. لیکن وہ خود چلی جاتی ہیں, یعنی ان کی دوسری جگہ شادی ہو جاتی ہے, یا وہ فیصلہ کرتی ہیں کہ اپنے ماں باپ کے گھر چلی جائیں, یا وہ فیصلہ کریں کہ اپنے کسی بیٹے کے پاس چلی جائیں, تو وہ آپ کے اوپر اب گناہ نہیں ہے, مرنے والے کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. واللہ عزیز الحکیم, اللہ تعالیٰ عزیز و حکیم ہے. تو اب یہ ایک سال کے لیے ان لوگوں کے لیے حکم دیا گیا ہے جو اپنی زندگی میں اپنی وفات کے موقع پر ان کی بیوی جو بھی ہو اپنی بیوی کے لیے وہ ایک سال کے لیے دو نصیحتیں کریں گے, ایک یہ کہ سال پورے کا خرچہ دیں گے اور دوسرا یہ کہ اپنی بیوی کو سال بھر کے لیے گھر سے نہیں نکالیں گے, یعنی ان کو پورے رہنے کا موقع دیا جائے گا. وصیت اور گھر سے نہ نکالنا, یہ دو چیزیں, یعنی مال میں سے کچھ دینا خرچہ سال بھر کے لیے اور گھر سے نہ نکالنا, یہ اس وراثت کے حکم سے الگ ہے. جو وراثت میں ان کو حصہ ملے گا وہ الگ ملنا ہے, اور یہ وصیت ایک سال کے لیے خرچہ دینے کی الگ سے ہے. میں پیچھے بھی جتنے احکام گزرے ہیں اس میں واضح کرتا رہا ہوں कि मियाँ बीवी का ताल्लुक खुदा की निगाह में ऐसा है कि शौहर को अपनी हिम्मत के मुताबिक उस पर खर्च करते रहना है, क्योंकि उनकी जिम्मे उनको कवाम इसी शर्त पर बनाया गया है कि वो अपनी बीवियों का खर्चा उठाने वाले हैं। और पीछे अल्लाह ताला ने आगे भी आ गया कि हक्कन अलल मुत्तकीन, ये नेक लोगों के ऊपर हक है बीवियों का कि वो अपनी जेब से उनके ऊपर खर्च करें। तो तलाक में भी ऐसा ही है, उनको भी निकाला जाएगा जब तक इद्दत पूरी ना हो जाए, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं और आगे सूरह तलाक में भी आएगा। तो अब ये वसीयत अल्लाह ताला ने फरमाई कि हुक्म ये फरमाया कि जो लोग फौत हों और उनकी बेगमात जो हैं वो ज़िंदा हों तो उनको एक साल के लिए खर्चा देना है और घर से निकालना नहीं है। ये उन मुआशरों के लिए हुक्म है जहाँ पर बेवा औरत दूसरी जगह शादी कर लेती है। हमारे मुआशरे में तो वो सारी ज़िंदगी शोहर के खर्चे पर रहती है या बच्चों के खर्चे पर, इसलिए ये वसीयत हमारे मुल्क में हमारे मुआशरे में चलनी ज़रा मुश्किल है, क्योंकि वो तो ज़िंदगी भर का ख़र्चा उठाया होता है। वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, फरमाया कि अल्लाह ताला अज़ीज़ु हकीम है। अज़ीज़ के मानी हैं कि ज़बरदस्त है, सबके ऊपर उसकी हुकूमत है, उसके हुक्म को मानना चाहिए, जो उसके हुक्म को नहीं मानेगा वो पकड़ा जाएगा। और हकीम है, अल्लाह ताला को मालूम है कि चूँकि औरतों पर कमाने की ज़िम्मेदारी नहीं डाली गई तो बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं कि जो जब उनके मियाँ फौत होते हैं तो उनके पास कोई ज़रिया मुआश नहीं होता, तो इसलिए साल भर का जो ख़र्चा है उनको देना है। अब बाज़ ऐसी सूरतें भी हो सकती हैं कि विरासत है ही कोई नहीं है लेकिन ख़र्चा दिया जाएगा। तो ये अब ज़ाहिर है कि पीछे अल्लाह ताला ने यह भी बात बयान की है कि वारसों के ऊपर आ जाएगा तो बच्चों के ऊपर आ जाएगा, और अल्लाह का शुक्र है कि हर माँ के साथ अगर बच्चे हों तो वो उसकी ज़िम्मेदारियाँ उठा ही लेते हैं। तो हिकमत का मतलब यह है कि अल्लाह ताला बात चीज़ों को अपने सामने रख कर मुआशरों में जो कुछ होता है उसको सामने रख कर हुक्म दे रहे हैं। अब ज़ाहिर है कि हमें इस हुक्म के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक अपने मुआशरे में जो तब्दीलियाँ करनी चाहिए वो करनी चाहिए थी, लेकिन 1200-1300 साल से हम इस्लाम को अपनाए हुए हैं लेकिन हमने बहुत सारी तब्दीलियाँ अपने मुआशरे में इस पहलू से नहीं की हैं कि हमारे यहाँ भी बेवा दूसरी शादी करने के लिए हकदार बन जाए और बच्चे इस बात को कबूल कर लें, और जो बहन भाई हैं, वालदैन हैं खातून के, वो भी इसको कबूल कर लें। आगे फरमाया वलिल मुतल्लकाति मताउन बिल मारूफ हक्कन अलल मुत्तकीन। तो बेवा औरत के लिए जब एक साल का ख़र्चा मुकर्रर किया तो फरमाया कि तलाक देते वक्त भी औरतों को ना जो देख रखा है उसके अलावा मज़ीद दे दिया जाए अच्छे तरीके के साथ, ये मुत्तकीन के ऊपर लाजम है। यानी तलाक के मौके पर जो बीवी को दिया हुआ है कुरान ने बताया कि वो वापस नहीं लिया जाएगा, ना उससे हक महर वापस लिया जाएगा, अगर नहीं दिया हुआ तो उसको अदा कर दिया जाएगा। और इसके अलावा भी हुक्म दिया कि तलाक के मौके पर तलाक देते वक्त बीवी को मज़ीद कुछ दे दिया जाए अच्छे तरीके से, भले तरीके से। हक्कन अलल मुत्तकीन, ये फ़र्ज़ है मुत्तकीन के ऊपर। तो ये है वो कुरान मजीद जिसके बारे में कहा जाता है कि वो औरतों के हकूक़ की पासदारी नहीं करता। उसने देखिए कि बात जब एक ज़िम्मेदारी डाली है, बीवी को कवाम नहीं बनाया, शोहर को कवाम बनाया है और बीवी को एक दर्जा ज़्यादा दिया है, तो शोहर के ऊपर फिर एक ज़िम्मेदारी भी ज़्यादा कर दी है कि वो अब अखराजात उठाएगा और तलाक के बाद भी और फौत होने के बाद भी अपनी बीवी की ज़िम्मेदारियाँ निभाएगा। कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून। तो इस तरह से अल्लाह ताला अपनी बातों को, अपनी आयतों को वाज़े करते हैं ताकि तुम समझदारी से काम लो। तो अब ये इस आयत का मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने ये कुछ आयतें अपनी वाज़े की हैं, अपनी आयतें कुछ वाज़े की हैं। इसका मतलब है कि कुछ सवालात थे सूरह तलाक में जो चीज़ें ज़र बहस आई थी उस पहलू से, और यहाँ कुछ जिहाद के पहलू से सवालात पैदा हो गए। तो याद होगा कि जिहाद के अंदर कुछ यतीम होने वालों का मसला ज़र बहस आ गया था, उन यतीम बच्चों की माओं से शादी करने का मसला ज़र बहस आ गया था, फिर सवाल से सवाल पैदा होते चले गए और यहाँ आकर वो बहस मुकम्मल हो गई। तो जो सवालात पैदा हुए थे यतीमों की माओं के पहलू से, फिर हैज़ का मसला आ गया, इद्दत का मसला हो गया, ये सारे यहाँ पर आकर मुकम्मल हो गए हैं और अल्लाह ताला ने बेवा और मुतल्लका के मसाइल को बयान करते हुए, इस बहस को ख़त्म करते हुए ये कहा है कि मैंने ये आयतें वाज़े की हैं तुम्हारे लिए ताकि तुम समझो। युबैनों के जो मानी हैं और दोनों की वजह से तरजीह देने में मसला पैदा हो जाता है, युबैनों का मतलब ये भी है कि अल्लाह ताला वाज़े करते हैं अपनी बात को, और युबैनों का मतलब ये भी होता है कि बयान कर देते हैं, बता देते हैं। इसमें बहुत सारे अहकाम ऐसे हैं जो बिल्कुल नए दिए गए हैं, इसलिए ये किसी आयत की वजाहत नहीं है बल्कि नए अहकाम हैं, नए फतवे हैं गोया समझ लीजिए अल्लाह ताला की तरफ से। तो यहाँ ये सिर्फ बयान कर देने के मानी में है, लेकिन सवाला से सवाला चूँकि पैदा हो रहे थे इसलिए इसको भी युबैनुल्लाह के अल्फाज में बयान कर दिया कि जो सवालात पूछे गए बिल्कुल नई चीज़ें पूछी गई, यानी पूरे कुरान मजीद में कहीं और तलाक़ के बाद के ये हकूक़ बयान नहीं हुए। तो इसलिए फिर यहाँ पर जो बेवा के जो हैं, हैज़ के जो मसाइल हैं, ये पहली दफ़ा यहाँ बयान हुए हैं। तो इससे ये बात वाज़े होती है कि सिर्फ बयान करना भी यहाँ युबैनों के अंदर शामिल है। लअल्लकुम ताकिलून, ताकि तुम समझो, मैं इसका तर्जमा कर रहा हूँ ताकि समझो। कुछ लोग इसका तर्जमा करते हैं ताकि तुम अकल से काम लो, और फिर यहाँ से ये बात निकालते हैं कि अल्लाह ताला भी अकल को वैसी ही हैसियत देते हैं जैसे अफलातून के मानने वाले देते हैं। देखिए, इल्म की दुनिया में जो तरीक़ाकार होता है इल्म हासिल करने का, उसमें दो बड़े स्कूल रहे हैं, दो बड़े मकातब फ़िक्र रहे हैं, अगरचे वो खालसतन कोई भी एक स्कूल मौजूद नहीं है दुनिया में। एक स्कूल का ख्याल ये है, एक मकतब फ़िक्र का ख्याल ये है कि अकल से ही सारा कुछ जाना जा सकता है, उसके लिए हवास की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा मकतब फ़िक्र ये है कि सारा कुछ जानने के लिए हवास के बग़ैर चारा नहीं है। ठीक है, एक को मादियत प्रस्त कहते हैं और एक को आइडियल प्रस्त कहते हैं। तो अकल जो है वो बिलाशुबा एक बड़ी चीज़ है, इसमें कोई शुबा नहीं। अगर अकल कोई चीज़ है तो उसको मैं बयान कर रहा हूँ कि अकल जो है वो बिलाशुबा सोचने समझने का काम करती है और फैसले करती है, लेकिन ये हवास के बग़ैर इसकी कोई हैसियत नहीं है। ये हवास से जो मवाद इकट्ठा करती है उसको समझती है, उसके बारे में अपने फैसले करती है, और इसके रहनुमाई के लिए पीछे फितरत का इल्म मौजूद है। फितरत का ये जो इल्म है ये बहुत जामे है। हमारे यहाँ जो फ़लसफियाना ताबीरात में चंद चीज़ें गिनवाई जाती हैं, मसलन अदद का इल्म है, मसलन फॉर्म्स जो हैं चीज़ों की उनका इल्म है कि हम गधे को घोड़े से फ़र्क कर लेते हैं इसलिए कि हम पैदाइशी तौर पर इस तरह की चीज़ों को जानते हैं। इसी तरह जो कांट ने कुछ चीज़ें बयान की फ़लसफे के अंदर के, वो हम ए प्रायरी तौर पर जानते हैं, तजुर्बे के बग़ैर जानते हैं। कुरान मजीद से फितरत का एक इल्म इसी हैसियत से मालूम होता है कि वो भी तजुर्बे के बग़ैर हमें अता किया गया है। लेकिन अब जदीद तहकीकात से फितरत की वसअत बहुत नुमायाँ होती चली जा रही है, जदीद तहकीकात नफ्सियात में और जहन के मुताले से हमारे सामने आ रही हैं, उससे ये मालूम होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों का इल्म पैदाइशी तौर पर जानते हैं। इसमें फिज़िक्स भी शामिल है, इसमें गिनती और काउंटिंग भी शामिल है, इसमें बेशुमार चीज़ें, डिस्टेंस का, छोटे बड़े साइज़ का, तादाद का, वक्त का, ये एहसास हमें पैदाइशी तौर पर हम जानते हैं। और ये जो चीज़ें हैं सारी की सारी, ये सिर्फ़ एक समझ लीजिए कि हमारे अंदर तसव्वुरात की शक्ल में मौजूद है। ऐसा नहीं कि हम बचपन यानी पैदाइशी तौर पर सीख के आते हैं कि वक्त को वक्त कहना है, नाम हम उसको देते हैं दुनिया में आकर। किसी इलाके में टाइम कह दिया गया, किसी में वक्त कह दिया गया, किसी में ज़मान कह दिया गया, किसी में कुछ कह दिया गया, तो ये एक अलग चीज़ है कि उसका नाम क्या रखा है। लेकिन हमारी फितरत में कुछ चीज़ों का तसव्वुर मौजूद है, हम तादाद का तस्वुर जानते हैं, गिनती हमें सिखाई जाती है, पैदाइशी तौर पर हम तादाद के थोड़े और ज़्यादा होने का तस्वुर जानते हैं, पैदाइशी तौर पर हम छोटे और बड़े होने का, फासले का ये तस्वुर हम जानते हैं पैदाइशी तौर पर, या यूँ कह लिए कि वो चीज़ें हैं जिनको हम पहचान सकते हैं। यूँ भी बात कही जा सकती है कि मैं एक सड़क को देख कर सामने अंदाज़ा लगाता हूँ यहाँ फासला मौजूद है, और वाक़यात के गुज़रने से मैं ये एक अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि टाइम गुज़र रहा है। कुछ इस तरह की चीज़ भी आप इसको बयान कर सकते हैं। ये फितरत जो है ये गाइडिंग है अकल के। तो अकल के पास दो मवाद होते हैं, एक ये प्रिंसिपल्स हैं जो हमारी फितरत में मौजूद हैं, इसी में अखलाक के प्रिंसिपल्स हैं, इसी में खुदा के तसव्वुर भी मौजूद हैं। तो ये एक हमारे पास फितरत में चीज़ मौजूद है, और बाहर से हम मवाद लेते हैं। तो मिसाल के तौर पर ये कमरे का मंजर जो आपके सामने आ रहा है, ये मवाद है जो हमें मिल रहा है। हम इस मवाद को अपनी अकल की रोशनी में कुछ फासले महसूस कर रहे हैं, कुछ ये हमारी आँखों को देखने की इतनी आदत है फासले के साथ कि तस्वीर में भी हम फासला देख रहे होते हैं, हालांकि वो एक कागज़ पर बनी हुई होती है जिसमें कोई फासला नहीं होता, लेकिन हम अंदर से हमारी दिमाग की साख्त इस तरह से है कि हम उसमें भी फासला देख रहे होते हैं। चुनाँचे हम कैमरे की तस्वीर उतारते हैं जो बिल्कुल एक मिलीमीटर से भी कम मोटे सफ़े पर बनी होती है, और उसके अंदर हम मीलों का फासला देख रहे होते हैं, क्योंकि हमें हम फासला देखने की लिए बनाए गए हैं। हमारे अंदर हमारी फितरत हमें आगाह करती है कि फासला मौजूद है। तो ये अब जो चीज़ है ये अकल को गाइड करती है, और बाहर से मवाद लेकर वो उसका तजिया करती है। तो ये सारी बात है हकीकत में। लेकिन हमारे जो फ़लसफियाना दो तकसीमें हैं उसमें अकल महज को बड़ी वक़्त दी गई, और सिर्फ इस बुनियाद पर कि मेरे अकल में ये बात यूँ समझ आ रही है मान लिया जाता है। ये याद रखिए कि हमारा जो भी अकल का ख्याल हो या इल्म का तज़िया हो हमारा, उसमें अकल इस काबिल नहीं है कि हक का फ़ैसला कर सके। हक का फ़ैसला या फितरत करती है या बाहर से किसी चीज़ को फ़ैसला कुन मानना पड़ेगा। यानी हम अकल की बुनियाद पर किस तरह फ़ैसला करते हैं कि मिसाल के तौर पर मैंने अपने हाथ में एक नट पकड़ा हुआ है और एक बोल्ट पकड़ा हुआ है, तो इसमें लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। एक बार बार देखने वाला आदमी अपनी अकल से फ़ैसला कर लेता है कि हाँ ये इसमें लग जाएगा, वो साइज़ देखते बता देता है इसका साइज़ क्या होगा, लेकिन हो सकता है कि मुझे फ़ैसला करने के लिए तजुर्बा करना पड़े कि लग जाएगा नहीं लग जाएगा। तो माहिर आदमी जिसने तजुर्बे से ये सीख लिया है, तो उसके बार बार के तजुर्बा तो उसको बता रहे हैं कि ये पेच इसमें लग जाएगा, लेकिन मुझे अपनी अकल का फ़ैसला करने के लिए कि मेरी अकल सही सोच रही है कि नहीं, मुझे वो तजुर्बा करके देखना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने क्या किया, तजुर्बे को फ़ैसला कुन बना लिया। दीनियात में हम क्या करते हैं, हम वही के ऊपर चले जाते हैं कि वही से फ़ैसला करवाते हैं। तो अकल को अपने फ़ैसलों के लिए सालिस की ज़रूरत है, फ़ैसले के लिए एक बाहर एक हतमी चीज़ की ज़रूरत है जिस पर मैं परख कर देख सकूं कि ये बात दुरुस्त है कि नहीं दुरुस्त है। तो साइंसदानों ने इसको मादी तजुर्बात और लैब के टेस्ट और मेडिकल टेस्ट और इस तरह की चीज़ों पर मुनहसर कर दिया, और अहले अदियान ने अपनी मजहबी किताबों पर इसको मुनहसर कर दिया। और पीछे एक फितरत है जो बाज़ूकात चूँकि गलती का शिकार हो जाती है, तो इस वजह से फितरत को भी बाज़ूकात हम फ़ैसला कुन नहीं मान पाते। लेकिन बहुत सारी चीज़ों में हम फ़ैसला करते हैं, मसलन सच अच्छा है ये फितरत का फ़ैसला है, तो हम फितरत के इस फ़ैसले को तस्लीम करते हैं कि सच अच्छी चीज़ है, और इसी तरह हम ये फ़ैसला तस्लीम करते हैं कि ये चीज़ खूबसूरत लग रही है कि बदसूरत लग रही है, हम ये फ़ैसले मानते हैं फितरत के। लेकिन बाज़ जगहों पर जहाँ इख्तलाफात हो जाते हैं फिर हमें बाहर एक सालिस की ज़रूरत होती है। तो मज़हबी आदमी के लिए फ़ैसला कुन कुरान व सुन्नत करते हैं, इस्लाम के अंदर तौरात वालों के यहाँ तौरात को करना चाहिए, इंजील वालों के यहाँ इंजील को करना चाहिए, और मुसलमानों के दरमियान कुरान व सुन्नत को करना चाहिए जब मामला दीनी अमूर का हो। दुनियावी अमूर में एक अलग बात है कि आप दुनिया के मामलात में फिज़िक्स का कौन सी थ्योरी ठीक है कौन सी नहीं है, उसमें साइंसदानों के जो मेथड्स हैं उसको इख्तियार किया जाएगा। लेकिन अब होता क्या है कि अकली लोग जो हैं वो دوسروں کے اوپر تنقید کرتے رہتے ہیں اور وہ دوسروں کے اوپر، لیکن سچی بات ہے کہ خالص عقل کے بنیاد پر دنیا کا کوئی فیصلہ موجود نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تجربہ یا فطرت کی گواہی موجود ہے، اور اسی طرح دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو حواس کی وجہ سے صرف حل ہوئی ہو، حواس کا فیصلہ ہو، وہاں بھی فطرت کا فیصلہ اور کسی اور چیز کا فیصلہ لازماً شامل ہوتا ہے۔ تو لعلکم تعقلون میں صرف اتنی بات ہے کہ تم سمجھو، یہاں پر عقل بحثیت جو فلسفے میں مانی جاتی ہے وہ زیر بحث نہیں ہے۔ لعلکم تعقلون کا مطلب ہے سمجھدار لوگوں کے لیے یہ بات قابل فہم ہے، وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں اور اللہ کی عزت اور حکمت کی بنیاد پر اس کو اختیار کر سکتے ہیں، اور وہ اس کے اندر وہ دانائی سمجھ سکتے ہیں جو شریعت میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ بس اتنی بات ہے یہاں پر۔ الم ترى الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون۔ اب مضمون واپس اس بات پر چلا گیا ہے جہاں سے یتیموں کا مسئلہ شروع ہوا تھا، اور پھر پے در پے سوالات پیدا ہوتے چلے گئے تھے، وہ جہاد کا مسئلہ تھا، اس کی طرف اب اللہ تعالیٰ دوبارہ بڑھ رہے ہیں، اس کے لیے ایک تمہید باندھی ہے کہ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے جبکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، موت کے ڈر کی وجہ سے جو نکل گئے اپنے گھروں سے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مر جاؤ، پھر ان کو زندہ کیا، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اب یہ جو بات ہے یہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے، جو مفسرین نے واقعہ نکالا ہے وہ اہل کتاب کا، غالباً سموئیل نبی کے زمانے کا یہ واقعہ ہے کہ ان کی حکومت جو حضرت داؤد وغیرہ سے پہلے جو چلی آ رہی تھی، حضرت موسیٰ کے زمانے سے سرداری کے ٹائپ کی وہ حکومت چل رہی تھی، اس میں انبیاء کے ذریعے سے تعلیمات ہو رہی تھیں حضرت موسیٰ کے بعد یوشع بن نون، اور پھر غالباً اس زمانے میں سموئیل نبی جو تھے وہ لیڈ کر رہے تھے اپنی قوم کو۔ تو اس زمانے میں کیا ہوا کہ فلسطین جو تھے، جو فلسطین کے علاقے کی قوم تھی، انہوں نے ان کے اوپر حملہ کیا، یہ ہزاروں کی تعداد میں تھے لیکن گھروں سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے، غالباً کو 30,000 کے قریب لوگ مارے گئے۔ ظاہر ہے کہ یہ 30,000 لوگوں کی تعداد ماری جائے تو ہر گھر میں گویا صفحہ ماتم بچ گئی ہوگی، تو ایک بڑا عذاب سمجھا گیا اس کو، بڑی ہی بری حالت ہو گئی۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم مر جاؤ۔ مر جاؤ کا مطلب مجازی معنی میں ہے کہ اب تمہارے لیے موت کا صحیح حالات ہے، جس طرح اس وقت امت مسلمہ کو امت مرحومہ کہا جاتا ہے، کچھ اسی طرح کی حالت ان کی ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی۔ اب یہ زندگی جو ہے یہ 20-25-30 سال کے بعد غالباً ملی ہے۔ اس میں یہ ہوا کہ سموئیل نبی نے ان کو آمادہ کیا، ظاہر ہے کہ ایک بڑا حادثہ ہو گیا تھا، 30,000 لوگ مارے گئے تھے، تو انہوں نے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو آگاہ کرنا شروع کیا، ان کو کہا کہ تم بتوں کی پرستش چھوڑ دو، شرک کو چھوڑ دو، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس طرح کی تلقینیں انہوں نے کی، جس کے نتیجے میں ان کے اندر دوبارہ ایمان تازہ ہوا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ثم احیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی عطا کی۔ یہ ظاہر ہے کہ اہل کتاب تو اس واقعے سے اچھی طرح واقف ہوں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ مسلمان بھی جو یا مدینہ کے لوگ بھی ان واقعات سے واقف ہوں۔ تو چونکہ مخاطب یہاں پر اہل کتاب اور مومن اکٹھے ہیں، اس لیے یہ واقعہ یقیناً ان کے لیے عبرت کا سامان ہوگا۔ تو فرمایا کہ میں نے پھر ان سے کہا کہ تم زندہ ہو جاؤ۔ یہ زندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر ایمان تازہ ہوا، اور پھر ان کو وہ طاقت حاصل ہوئی جو سموئیل نبی کے زمانے میں۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، تو یہ زندگی کیوں دی گئی، دوبارہ ایمان کیوں تازہ کیا گیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہوتے۔ اب یہ قانون کیا ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ کیا یہ قوموں کے ساتھ، ہر قوم کے ساتھ ایسا ہی ہے؟ ایک لحاظ سے ہر قوم کے ساتھ ایسا ہے، لیکن یہ دراصل ملت ابراہیمی کے ساتھ ہے۔ بلکہ ذریت ابراہیم کے ساتھ ہیں، صحیح تر لفظوں میں یہ کہنا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے علامت مقرر کیا ہے کہ یہ اگر نیک ہوں گے تو ان کو غلبہ ملے گا، اور اگر یہ نیک نہیں رہیں گے تو ان کو موت طاری ہو جائے گی، سزا ملے گی. تو بنی ابراہیم جو ہیں ان کے لیے یہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کا. تو جب انہوں نے شرک پرستی شروع کر دی، اس زمانے اتاکاتے آتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سزا نافذ کر دی. یہ سزا ہر موقع پر ان کو ملتی رہی ہے اور قیامت تک ملتی رہے گی قرآن کے مطابق. اور اس میں صرف یہود شامل نہیں ہے، یعنی بنی اسرائیل صرف شامل نہیں ہے، بنی اسماعیل بھی شامل ہے. بنی اسماعیل کو بھی سزا ملی ہے جب ان سے حکومت چھنی ہے ترکوں کے زمانے میں، وغیرہ وغیرہ. اور ابھی آپ دیکھیے کہ سعودی عرب میں ڈیلا ڈالا ہی صحیح، ایک اسلامی انقلاب لانے کی کوشش کی گئی، جس میں ناقص صحیح لیکن شریعت نافذ کرنے کی کوشش کی گئی، اللہ کے دین کے اوپر حکومت ایک قائم کی گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانے کھول دیے. اور جیسے ہی انہوں نے اس چیز میں واپس ہونا شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے واپس لینا شروع کر دیا. تو یہ جو ابھی بھی وہاں جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ معاشی قسم کی کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن ان کے لیے یقیناً اس میں بھی ایک راستہ ہوگا کامیابی کا. لیکن اصل میں ان کے لیے کامیابی کا راستہ اسی میں ہے کہ وہ خدا کے دین کی طرف واپس آئیں. تو یہ ایک علامت ہے گویا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد جو ہے، کہ جب یہ خدا کے دین کو اپنائیں گے تو خواہ وہ بنی اسرائیل ہوں خواہ وہ بنی اسماعیل ہوں، ان کو لازماً غلبہ ملے گا، اور اگر وہ نہیں اپنائیں گے تو ان کو لازماً سزا ملے گی. خواہ ان کے اندر بہترین قسم کے دانشور ہوں، خواہ ان کے اندر بہترین قسم کے سائنسدان ہوں. تو یہ وہ حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، اس قانون کو نافذ کر دیا گیا کہ موتو، اب مر جاؤ. اور پھر ان کو زندگی عطا کی جب انہوں نے اپنی اصلاح کر لی. تو سموئیل نبی کے زمانے میں انہوں نے اپنی اصلاح کر لی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو آگے فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. تو اب چونکہ میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم، جہاد کی بات چل رہی تھی اس میں دوسرے احکام زیر بحث آ گئے تھے، تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے یہ حکم دیا کہ اب تم بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے، قتال کرو گے، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. تو اب دوبارہ حکم جہاد کی طرف آ گیا، اور اس کے لیے ایک تمہید باندھی تھی، ایک واقعے کو عبرت کے طور پر پیش کیا کہ تمہارے اندر بھی ایمان جو ہے وہ اسی درجے کا ہونا چاہیے، کمزوری نہیں ہونی چاہیے. اگر تم منافقت سے کام لوگے تو تمہارے لیے بھی وہی حکم ہوگا کہ موتو، مر جاؤ. اور اگر تمہارے اندر ایمان تازہ رہے گا تو اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی دیے رکھے گا، اور ہزاروں کی تعداد کا تھوڑی تعداد ہونے کے باوجود تم کامیابی اختیار کرو گے، اللہ کا تمہارے ساتھ ساتھ ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ جیسا اس گروہ کے ساتھ ہوا کہ ہزاروں کی تعداد میں تھے لیکن گھر چھوڑ کر بھاگنے پڑ، ایسا نہیں ہوگا. تو اس لیے اللہ کی راہ میں تم جہاد کرو گے اپنے اس ایمان کے جذبے کے ساتھ، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ جب تم جہاد میں اترو گے تو اگر تقوی کے ساتھ اترو گے، خدا کی خوشنودی کے لیے اترو گے، تو اللہ تمہارا ساتھ دے گا. اور اگر بدنیتی کے ساتھ جاؤ گے، منافقت کے ساتھ جاؤ گے، تو تب اللہ تعالیٰ تمہارا ساتھ نہیں دے گا، کیونکہ وہ سمیع علیم ہے. تو جہاد عدل کے لیے ہوگا، یا اس وقت صحابہ کے لیے جو حکم تھا نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے. تو یہ دو طرح کے جہاد جو ہیں صحابہ کے لیے تھے، اس لیے ان کو اس میدان میں اترنا ہی اترنا تھا، کیونکہ رسول کا ساتھ دینا تھا، اور بنی اسماعیل جو ہیں وہ اللہ کے نمائندے ہونے کی وجہ سے رسول کا ساتھ دینے پہ مامور کیے گئے تھے. اب یہ جو جہاد ہے، اس میں ظاہر ہے کہ اس زمانے میں کیا ہر زمانے میں پیسہ خرچ ہوتا ہے. تو اس جہاد کے لیے نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو پیش کرنا تھا، بلکہ جو مال تھا اس کو بھی دینا تھا، اور उस वक्त दोनों सूरतें होती थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्तमाही तौर पर भी कोई इंतज़ाम कर लेते थे, लेकिन इतना तो हर सिपाही को करना पड़ता था कि अपनी तलवार और अपना नेज़ा और अपने तीर और अपने कमान बनानी पड़ती थी। अगर नहीं बना सकता था तो फिर हुकूमत की तरफ से अता किया जाता था। तो दोनों सूरतों में अगर आदमी अपना सामान खुद तैयार कर ले तब भी उसने जिहाद पे इन्फाक कर दिया है, और अगर कोई किसी दूसरे ने मेरा इंतज़ाम कर दिया है, मुझे तलवार ले दी है, तो उसने भी अल्लाह की राह में जिहाद के लिए इन्फाक कर दिया। तो ये जो इन्फाक की दोनों सूरतें थीं उसका मुतालबा अल्लाह ताला ने ख़ास अल्फाज में किया है। फरमाया मन ज़ल्लज़ी युक्रिज़ुल्लाह कर्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज़ हसना अता करेगा। फ़युज़ाइफ़हु लहू अज़ाफ़न कसीरा, तो फिर अल्लाह ताला उसको बढ़ा चढ़ा कर कई गुना ज़्यादा कर कर देगा। वल्लाहु यकबिज़ु व यबसुतु व इलैही तुरजाऊन, अल्लाह ही जो है वो रिस्क को तंग करता है और खोलता है, और उसी की तरफ तुम सब पलट कर जाओगे। तो अल्लाह की राह में जो ख़ास तौर से जहाँ जिहाद की बात हो रही है, तो उसमें जो खर्च किया जाएगा वो अल्लाह ताला के ज़िम्मे कर्ज की तरह है, गोया अल्लाह ताला ने एक उधार ले लिया है आपसे, और कर्ज़ को अल्लाह ताला जब वापस करेंगे तो कई गुना बढ़ा कर वापस करेंगे। ये गोया बशारत है, और अल्लाह जिहाद के रास्ते में खर्च करने के लिए, उभारने के लिए ये बात कही गई है। यहाँ कर्ज़ हसना का अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, इसके बड़ी ताबीरात की गई हैं। कर्ज़ हसना का मतलब जो लफ्ज़ों से निकल रहा है वो सादा सा है कि आप खुशनुदी के साथ, दिल की रजामंदी के साथ अच्छा माल, अच्छी चीज़ अल्लाह की राह में खर्च करें, तंग दिली के साथ रोते पीटते हुए, या घटिया सामान अल्लाह की राह में खर्च ना करें। ये मुराद है कर्ज़ हसना का। और इसमें दूसरा पहलू यह है कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना, ये कर्ज़ हसना। तो कौन है जो अल्लाह की राह में कर्ज़ हसना देगा और फिर अल्लाह ताला उसको बढ़ा चढ़ा कर कई गुना ज़्यादा देंगे। ये असलूब ज़ाहिर है कि मैंने कहीं पढ़ा, किसी नौजवान ने लिखा हुआ था, लो जी अल्लाह ताला कर्ज़ भी लेते हैं। ये ज़ुबान के असालीब को ना समझने का मसला है। किसी बात को ताबीर करने के लिए, उभारने के लिए, कौम को अंगेख्त करने के लिए, उनके अंदर जज्बा बेदार करने के लिए इस तरह की ताबीरें इख्तियार की जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि अल्लाह ताला मोहताज हो गए हैं, उनको कर्ज़ की ज़रूरत है। तो ये गोया अल्लाह ताला ने एक तरह से वादा लिया है कि समझो कि तुम जो कुछ खर्च करोगे वो मेरे ऊपर तुम्हारा कर्ज़ है, क़यामत वाले दिन कई गुना करके उसको पलटाऊँगा, वापस करूँगा। आगे इस बात को मज़ीद वाज़े करने के लिए कि देखो, तुम अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए हो सकता है ये डर रहे हो कि तंग दस्ती आ जाएगी, मैंने अगर तलवार और तीर और ये ख़रीद कर दे दिया मुजाहिदीन को तो मेरे घर में तो पैसे की कमी आ जाएगी। तो उसको अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ही हैं जो रिस्क में तंगी करते हैं और रिस्क में कुशादगी पैदा करते हैं। तो जिस अल्लाह को तुम दे रहे हो, रिस्क उसी के कंट्रोल में है। तो अगर आज उसने तंगी नहीं दी तो हो सकता है कल भी ना दे, और अगर आज तुम्हारे पास खुशहाली है और तंगदस्ती आ जाएगी तो अल्लाह ही ने तंगदस्ती दी है, तो अल्लाह की तंगदस्ती को कबूल करना चाहिए। वो इम्तिहान के लिए उसने दुनिया बनाई है, तो घबराते क्यों हो? अल्लाह ही का कंट्रोल है, अल्लाह ही रिस्क दे रहा है। तो आज अगर खुशादगी है और देने से तंगदस्ती आ जाएगी और अल्लाह का फ़ैसला यही हुआ कि तंगदस्ती ही देनी है, तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला दे रहे हैं, तैयार हो जाओ। और अगर आज उसने तंगदस्ती नहीं दी तो हो सकता है कल भी तंगदस्ती ना दे, तो घबराते क्यों हो? तो दोनों बातें इसके अंदर समो दी हैं अल्लाह ताला ने कि कर्ज़ हसना तुम अल्लाह ताला को दे रहे हो, कई गुना बढ़ा चढ़ा कर वापस करेगा, लेकिन इस मौके पर खर्च करने से ये ख्याल ना करो कि तंगदस्ती आ जाएगी या मामला गड़बड़ ना हो जाए। तंगदस्ती भी अल्लाह की तरफ से है और कुशादगी भी अल्लाह की तरफ से। वो चाहेगा तो कुशादगी रखेगा, चाहेगा तो तंगदस्ती कर देगा। और तंगदस्ती अल्लाह की राह में खर्च करने से हो जाएगी? नहीं, दूसरे असबाब से भी हो सकती। तो तुम अल्लाह ताला के इस फैसले को कबूल करो कि तंगदस्ती और खुशहाली उसके हाथ में है। ये कोई बात नहीं है कि आज मैंने ये खर्च कर दिया तो तंगदस्ती हो जाएगी, नहीं, वो नहीं खर्च करोगे तब भी आ सकती है, और खर्च कर दोगे तब भी ज़रूरी नहीं है कि आए। तो ये बात, दोनों बातें अल्लाह ताला ने एक जुमले में वाज़े कर दी कि कि अल्लाह ताला के पास है रिज़्क़ को कब्ज़ा करना और रिज़्क़ को बसीत करना, खोलना। व इलैही तुरजाउन, और फरमाया कि चलो दुनिया में तंगदस्ती आ गई तो आना तो मेरे पास ही आना है। तो फिर जिसने मेरी खातिर खर्च किया होगा, कर्ज़ हसना दिया होगा, मैं उसको वाफर मकदार में वापस लौटा दूंगा, और जो मेरी वजह से खर्च नहीं करता होगा इस वजह से कि कहीं तंगदस्ती ना आ जाए, तो उसने मेरे पास ही आना। तो ये अब दूसरी दलील दे दी अल्लाह ताला ने कि आना तो मेरे पास ही है, लेना तो तुमने मुझसे ही है। तो अब लेने के लिए तैयारी कैसे करते हो? क्या बस इस डर से अल्लाह की राह में खर्च नहीं करोगे कि तंगदस्ती आ जाएगी तो मेरे पास ही आना? तो तंगदस्ती का नतीजा क्या निकलना है, फिर वो वहाँ जाकर देख लोगे। तो गोया यूँ अल्लाह ताला ने जो इन्फाक के बारे में इंसानी जहनों में सवालात पैदा होते हैं, उन सब को यहाँ दो दलाइल के ज़रिए से अल्लाह ताला ने, बल्कि तीन बातों के ज़रिए से कहना चाहिए कि अल्लाह ताला ने उसको हल किया है। एक ये कि जो भी तुम अल्लाह की राह में खर्च करते हो वो मेरे ज़िम्मे कर्ज की तरह है, एक बात अल्लाह ताला ने ये फरमाई है। दूसरी बात अल्लाह ताला ने यह फरमाई है कि मैं कई गुना बढ़ा कर दूंगा, उतना ही वापस नहीं करूंगा। जैसे कुरान मजीद से मालूम होता है कि 700 गुना तक भी जा सकता, ये तो कायदे की बात है 700 गुना। फरमाया कि सनजीदुल मोहसिनीन, मोहसिनीन को मजीद भी दिया जाएगा। तो एक दूसरी बात यह हो गई कि बढ़ा चढ़ा कर मिलेगा। तीसरी बात यह हो गई कि अब ये दलील के मकाम पर है कि अल्लाह ताला ही के कंट्रोल में है रिस्क, वही तंगदस्ती करता है, वही खुशहाली लाता है। तो अल्लाह की राह में खर्च करने से ये ना ख्याल करो कि तंगदस्ती हो जाएगी, तंगदस्ती दूसरे तरीक़ों से भी हो सकती है, क्योंकि अल्लाह ताला के कंट्रोल में है, चाहे तो तंगदस्ती कर दे, खा अल्लाह की राह में खर्च करने से कर दे, खा कोई चोरी करवा के कर दे, तो अल्लाह के कंट्रोल में है, या कसाद बदारी से कर दे, कारोबारी बंद हो जाए, दुकान पर कोई ग्राहक ही ना आए तो बंद कर सकता है। तो ये अल्लाह के कंट्रोल में है, इसलिए इन बातों में ना घबराया करो कि तंगदस्ती हो जाएगी या ये हो जाएगा। और एक और दलील दी कि भाई ले ही तुर जाऊँ, वापसी तुम सबकी मेरे पास है, तो इसलिए मुझे राज़ी करना चाहिए। मुझे राज़ी करने का तरीका यह है कि मेरी राह में खर्च करो, मेरी राह में निकलो, मेरी राह में जद्दोजहद करो। तो जो साबित कर देगा कि मेरा बंदा है, उसके लिए रिज़्क़ की वाफर ही वाफर, कोई कमी नहीं उसमें। ऐसी जन्नत मिलने वाली है कि जो ख़त्म होने वाली नहीं है। लेकिन भारत ये उन्हीं के लिए हौसला करने की चीज़ है जो अपने अंदर ईमान रखते हैं। देखिए हमारे यहाँ बड़ी तरतीब गलत हो जाती है लोगों के यहाँ। मैंने अक्सर मुल्हदीन को देखा कि वो कुरान की छोटी छोटी बातों पर एतराज़ कर रहे होते हैं कि जी ये देखो जी मौजज़ा आ गया, जी मौजज़े होते हैं भला, ये देखो जी अल्लाह ताला ने औरतों के साथ क्या कर दिया, अल्लाह ताला कह रहे हैं शोहर मार सकता है बीवी को। तो ये बातें वो आदमी करे जिसको बाकी चीज़ों पर एतबार है। मतलब ये कि अल्लाह ताला अगर हैं तो ये सारे सवालात अल्लाह से पूछे जाएंगे। तो पहले ये साबित कर लो कि अल्लाह हैं कि नहीं है, और ये कुरान अल्लाह की किताब है कि नहीं है, रवैये में तब्दीली तब आएगी। ये इस्तदलाल ठीक नहीं है कि देखो जी अल्लाह ताला ने कैसे अजीब हुक्म दिए हैं, वो सारी कायनात उसने ऐसी बनाई है, हुक्म भी वैसे। क्या इस कायनात में हमवार है हर चीज़? सारे लोग बराबर के अमीर हैं, सारे लोग बराबर के गरीब हैं, सारे लोग बराबर के हसीन हैं, सारे लोग बराबर के ताकतवर हैं? ऐसा नहीं। तो पूरी की पूरी कायनात ही ऐसे बनी है, इसकी एक एक ज़र्रा इम्तिहान के लिए बना है, एक एक ज़र्रा इम्तिहान के लिए बना है। इसलिए पहले ये तय कर लें कि खुदा है कि नहीं है, तो उसके अहकाम की भी यही हिकमत है जो कायनात के बनने की हिकमत है, कोई फ़र्क नहीं है। वो हुक्म ऐसे देता है कि जो हमारे लिए इम्तिहान का बायस होते हैं, वो ऐसे हुक्म नहीं देता सिर्फ कि जो हमारे फ़ायदे के हों। मैं अक्सर मिसाल दिया करता हूँ, सर्दियों में फजर की नमाज का क्या फ़ायदा है? अक्सर ज़ुकाम हो जाएगा, सर्दी लगेगी, फ़ायदा इबादत, वो खुदा की बंदगी का सबूत है और कुछ नहीं। वो क़यामत वाले दिन में इलैहि तुरजाउन होना है, वहाँ फ़ायदा मिलेगा। यहाँ हो सकता है कि उसके नतीजे में बीमार रहें आप, हो सकता है उसके नतीजे में कुछ ज़ुकाम रहे आपको, हो सकता है उसके नतीजे में नींद पूरी ना हो। मतलब गर्मियों में 4, 4:30 बजे नमाज चली जाती है तो नींद पूरी नहीं होती। तो ये इम्तिहान की जगह है और अहकाम भी इसी तरह के हैं। 5 वक्त की नमाज़ को अल्लाह को क्या लेना है? कुछ भी नहीं। ना अल्लाह को कोई फ़ायदा है, ना कोई नुकसान, ना मेरे सजदों से उसकी कोई शान में इजाफा होता है, ना मेरा सजदा ना करने की वजह से उसकी शान में कोई कमी आती है। तो फिर हुक्म क्यों दिया है? मेरी बंदगी आजमाने के लिए, कि मैं खुदा का फरमा बरदार बंदा हूँ कि नहीं हूँ, और मैं नमाज क्यों पढ़ूँ? इसी बात को साबित करने के लिए। बातों से बातें नहीं चलती हैं। कि आप बातें करते रहें कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ, अल्लाह ताला का फरमा बरदार बंदा हूँ, लेकिन मस्जिद में जाकर ना देखा हूँ, अल्लाह की राह में 1 रुपया जेब से निकला ना हो, अल्लाह की खातर कभी हक का इकरार ना किया हो, अल्लाह की खातर कभी झूठ से बचने की कोशिश ना की हो, और आदमी कहे कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, तो ये बातों से बात नहीं चलेगी। तो यहाँ रोक लेते हैं जी, वक्त हो गया है, नमाज का टाइम भी हो गया है।